نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں دور دور سے اس گرمی کے موسم میں آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں اس کی قدر ہونی چاہیے. حجت اللہ میں بہت سی علمی مباحث ہیں, علمی باتیں ہیں, اور ہر آدمی کا ذوق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علمی باتیں سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی تھی, اور انہیں یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ تم سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے, اس لیے اس گرمی میں آپ جو سننے آئے ہیں تو مناسب یہ لگا کہ ہم حجت اللہ سے ہٹ کے کچھ بات عرض کریں. فلسفے کی مباحث, علمی مباحث, اور جہاں پر مقدمے کے آخر پہ پہنچے ہیں حجت اللہ میں, وہ جملے ایسے ہیں جس کے ساتھ عام لوگوں کے انٹرسٹ کا, دلچسپی کا کچھ واسطہ نہیں ہے. تو آپ کے اس آنے کی قدردانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سمجھنے کی توفیق دی ہے. اور زندگی کے بہت بڑے قواعد اور اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے کہ جس طریقے پر بھی ممکن ہو اپنے ذہن کو مثبت سوچ کا حامل بنائے. جو چیز انسانی زندگی میں ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے, مصیبتیں پیدا کرتی ہے, حتیٰ کہ اللہ کے قرب میں مانع ثابت ہوتی ہے اور خدا سے دور کر دیتی ہے, وہ منفی طرز فکر ہے. اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کریں تو انسان کو ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ ہونی چاہیے اور نیگیٹو اپروچ, نفی میں سوچنا, یہ چیزیں نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی کو خراب کرتی ہیں بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور और ये सोचने का अमल कोई एक दो दिन की और दो चार महीनों की बात नहीं है, पूरी इंसानी जिंदगी पर मुहीत है। और आदमी अपने आप को आदत डालता है सोचने की, और जिस तरह इंसान ज़हन से सोचता है उसका दूसरा अमली मुजाहिरा अगर आप देखना चाहें तो बच्चा जुबान से बोलता है, बच्चा बात करता है और उसे माँ बाप सिखाते हैं कि बात कैसे करनी है। फिर वो सिखाते हैं कि इसका क्या मतलब है, फिर वो सिखाते हैं कि ये लफ्ज कैसे बोलते हैं। बच्चा पानी को कुछ और कहता है और फिर माँ सिखाती है कि बेटे ये पानी है। तो जिस तरह इंसान बोलना सीखता है इसी तरह खामोशी भी सीखनी चाहिए कि किस मौके पर बोलना है और किस मौके पर चुप रहना है और किस मौके पर बात करनी है क्या और किस मौके पर खामोशी हो तो क्यों हो। इसलिए जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं इसी तरह बड़ी उम्र में खामोशी भी सीखनी चाहिए कि कहाँ पहुंच के चुप रहना है। इंसान सब कुछ वो है जो कुछ के वो सोचता है, और जितना मनफी सोचेगा उतना ही वो खुद भी बर्बाद होगा, लोगों को भी करेगा। और ये नेगेटिव थिंकिंग इतनी आ गई है, इतनी गालिब हो गई है और मुआशरे में इतनी बढ़ गई है कि हजारों में कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव सोचता हो, बेहतर सोचता हो, अच्छा सोचता हो और बनी नौ इंसान के लिए कोई खैर का पैगाम रखता हो। कौमें और उम्मतें जो अरूज पाती हैं वो अपनी सोच ही की वजह से पाती हैं, और कौमों और उम्मतों का जो जवाल होता है वो सोच ही की वजह से होता है। इंसानी सोच तमाम आमाल का मरकज है, इसलिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते थे मुस्लिम उम्मत वो कहते थे कि सोचने का तर्ज बदलो। और सोचने के तरीके को सही करो, जो सोचोगे वो अमल में आ जाएगा। और खराब सोच खराब आमाल को जन्म देती है और अच्छी सोच इंसानी मुआशरे को तरक्की देती है, अफराद का रब्त बढ़ता है। और जब अफराद का रब्त आपस में बढ़ता है तो यही आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा बन जाता है। तो जब तक इंसान अच्छा सोचना नहीं शुरू करता उसके आमाल में तब्दीली नहीं आती। नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज भी अल्लाह की तौफीक से करता है, और अगर सोच दुरुस्त नहीं है तो इन आमाल का वो असर मुरतब नहीं होता जो होना चाहिए। حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کی نماز میں سے صفر بھی اسے نہیں ملتا، اور bhi shakhs namaz padh ke lautta hai ki pura ajr paata hai aur aisa bhi aadmi hai jiski namaz ke khatam hone pe lapet ke uske muh pe maar dete hain ki ye hai tumhari namaz le ja wajah kya hai wajah ye hai ki namaz ke jo asraat murattab hone chahiye the wo nahi hue सोच है फिक्र है नमाज में अगर ये फिक्र होती कि अल्लाह के सामने खड़ा हूं और अल्लाह के हुजूर में खड़ा हूं तो देखो ये एक सोच है ना और एहसास होता कि शहंशाह है बादशाह है कुल कायनात का मालिक है मेरी और उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है जितनी ज़र्रे और पहाड़ की होती है तो ये सोच और है और वो आदमी जो सलाम फेरने से पहले सोचता है कि चार रकअतें हुई या तीन ही ये फर्ज पड़े कि सुन्नतें पड़ी दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है ये सोच ही है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन रहमतुल्लाह अलैह करबला में ये हुसैनी सादात खत्म हो जाते उनको बीमार समझ के छोड़ दिया और वो कहते थे मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने ताया ने यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह जो वालिद थे और हसन रजी अल्लाह जो उनके बड़े भाई ताया थे फरमाते थे दोनों भाइयों ने 25 हज पैदल किए मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा ये 4-500 किलोमीटर बनता है वो कहते 25 साल ऐसे गुजरे कि पैदल हज उन्होंने किए ये पैदल चलना आखिर क्या मुहर्रिक क्या था कौन सी चीज पैदल चला रही थी वो सोच है कि अल्लाह के यहां पहुंचना है और इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जब नमाज का वक्त आता था तो वालिद को मैंने देखा बेचैनी शुरू हो जाती थी वुजू करते थे खड़े होते थे रंग कभी-कभी उठ जाता था तो मैंने एक दिन पूछा कि क्या होता है आपको तो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है कि किसके दरबार में हाजिर होना है आदमी जब बादशाह के यहां जाना हो तो कैसा बन संवर के जाता है मैं घबरा जाता हूं कि पता नहीं क्या होगा बेशी हो रही है क्या कहेंगे ये सोच ही तो है और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि इतना फर्क पड़ जाता है तो दर हकीकत ये सोच है जो फर्क डालती है इसलिए करने के कामों में से एक काम ये है कि आदमी हमेशा मुस्बत अंदाज से सोचे चीजों को उनकी असल में पहचाने और इसीलिए बुजुर्ग दुआ मांगते थे और कहते थे कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया अल्लाह चीजों को उस हालत में दिखा जैसी कि वो असल में है और ये बड़ी मुश्किल है बारीक बात आप से अर्ज करें अगर आप और हम उसे समझ पाएं देखो चीजें अपनी असल सूरत में अल्लाह कभी-कभी दिखाता है आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में जिस आदमी के ख्वाब सच्चे होते हैं उसको जो चीज ख्वाब में दिखाई जाती है वो असल सूरत है अल्शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब पर एक रिसाला लिखा है लेकिन वो आम समझने की बात है नहीं एक आदमी ख्वाब देखता है कि किसी ने दूध दिया और उसकी ताबीर ये देते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें इल्म मिलेगा एक आदमी ख्वाब देखता है कि मुझे सांप ने डस दिया ताबीर देने वाला कहता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा अब जब ये ख्वाब पूरा होता है ना फिर पता चलता है कि अच्छा दूध देने वाला ये था और डसने वाला ये था ये जो आदमी से ख्वाब में दिखाया गया सांप और ये जो आदमी दिखाया गया कि दूध दे रहा है ये उन दोनों इंसानों की असली सूरतें हैं इसका मतलब है कि उसकी फितरत इतनी खबीस है कि वो डसता है अंदर से सांप है और वो इतना अच्छा आदमी है कि दूध देता है दूध तकसीम करता है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर के मुताल्लिक फरमाया था कि कयामत के कुर्ब में ये नहीं कहा कि ख्वाब उसके सच्चे होंगे जो नमाजी है जो परहेजगार है जो ऐसा है जो क्राइटेरिया दिया जो मयार दिया आपने फरमाया असदकहुम हदीतन असदकहुम रुयन उस जमाने में जो आदमी जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब उतने ही सच्चे होंगे क्योंकि कयामत के कुर्ब में सच्चाई खत्म हो जाएगी सच्चाई इसलिए खत्म हो जाएगी कि सोचता गलत है किसी के मुताबिक सोचता है कि ये आदमी फलां गुनाह में मुब्तला है दूसरा कहता है तुमने देखा है कहता है उसकी शक्ल नहीं देखी शक्ल से ही पता चलता है शराब पीता मात्र बस जितने वो बुनियाद शुरू करता है अपने कामों की तो नतीजा ये कि उसने झूठ पे बुनियाद रखी इस झूठ का असर क्या पड़ेगा रूह पर असर ये पड़ेगा कि रूह की आंखों की बिनाई कमजोर हो जाएगी अब रूह को तो कोई ऐनक लगा नहीं सकता नतीजा उसका क्या निकलेगा कि जो ख्वाब देखेगा ना वो ख्वाब धुंधला देखेगा साफ ख्वाब नहीं देखेगा इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि असदकुम हदीतन असदकुम रुयन कुर्बे कयामत में जो आदमी जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने ही सच्चे होंगे तो जो आदमी ख्वाब में देखता है ना किसी को बशर्ते के सच्चा आदमी देखे वो असल हालत देखता है उसकी उसकी एक मिसाल भी अर्ज करें वजाहत हो जाएगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्ची चीज कौन देख सकता एक दिन थे सोके तो परेशान थे ऐसी شدید परेशानी थी कि उठते ही पहला जितना जज्बाए मुबारक पैदा हुआ आपने फरमाया कि क्या हो गया है मैं मस्जिद नबवी में अपने मिंबर पे देखता हूं कि बंदर नाच रहे हैं क्या हो गया है मेरे मिंबर पे बंदर चढ़े हुए मुहद्दिसीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्वाब पूरा हुआ जब यजीद और उसके मुकर्रर करदा लोगों को हुकूमत मिली मदीना मुनव्वरा में तो जो लोग जिंदा थे और ताबईन थे बड़े बड़े लोग उन्होंने कहा ये देख लो बंदरों की हुकूमत आ गई बंदर में है क्या बंदर में दूसरे को नुकसान पहुंचाना चैन से ना बैठना तकलीफ परेशानी का पैदा करना यही करते रहे और अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हुसैनी तो चुप हो गए उन्होंने कहा बस खत्म करो अगर ये नस्ल बाकी रखनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद की तो अब आइंदा हुकूमत के मामले में सियासत में आना ही नहीं लेकिन हसनी सादात उन्होंने बात नहीं छोड़ी और हसनी सादात ने फिर इतनी कुर्बानियां दी इतनी कुर्बानियां दी कि शाम से लेके मदीना मुनव्वरा तक इन लोगों के जिस्म हुकूमत चौराहों पे लटका देती थी गोश्त गल जाता था हड्डियों के पिंजरे लग जाते थे पिंजरों में घोंसले बना लेते थे जानवर चिड़िया कोई और चीज और लोग अपनी नस्लों को भी बता देते कि ये फलां था हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का पड़पोता था ये फलां था इसने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी देख लो ये हश्र होगा अगर हुकूमत के खिलाफ बोले ये मुस्तकिल एक मौजू है और मुझे इल्म नहीं कि अब तक किसी ने भी लिखा हो कि हसनी सादात की कुर्बानियां क्या थी हमारे इल्म में नहीं है लेकिन ये कटने का काम है कि कोई लिखे हसनी सादात ने कहां कहां काम किए ये क्या था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा ना था कि बंदर बंदर मेरे मिंबर पर आ गए हैं वो बंदर थे तो जो चीज रूह देखती है वो असल हालत देखती है और फिर इससे ज्यादा कभी-कभी तरक्की होती है और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कश की दौलत से नवाजा होता है वो औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि वो इन आंखों से आलम बेदारी में देख लेते हैं कि ये क्या आलम बेदारी में पता चल जाता है वो जो ख्वाब थी उसको आप एक ग्रेड अप कर दें आलम बेदारी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे और वो देखते रहे ईरान से टक्कर कोई आसान मरला नहीं था तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं खुद जाऊंगा किसी की नहीं उन्होंने मानी और ये वही चीज थी जो हजरत बकर रजी अल्लाह ने की थी जब खत्मे नबूवत का मसला आया तो हजरत बकर रजी अल्लाह ने किसी की नहीं मानी और उन्होंने कहा मैं इनके खिलाफ जाऊंगा जिहाद करूंगा تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ آپ کی بات تو نہیں ٹالتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے جہاد کے لیے ان کا آپ نہ جائیں آپ یہی رہے ٹھیک یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی جب ایران کے لیے وہ جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کا امیر المومنین آپ نے چکی دیکھی ہے ان کا دیکھی ہے उन्होंने कहा उसके दरमियान में एक कील होती है और उसके गिर चक्की घूमती है तो आप उस कील की मालिक हैं आप ना जाएं आप जाएंगे खिलाफत का निजाम गड़बड़ हो जाएगा धर्म भ्रम हो सकता है आप यहीं रहें और यहां बैठ के हमें लड़ाएं हम जाएंगे सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु गए दीगर लोग गए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बाद आ गए उस इरादे से हट गए لیکن انہوں نے کہا جتنے بھی ایران کے لئے جا رہے ہیں میرے سامنے سے گزاروں میں انہیں دیکھنا چاہتا اور ایک قافلہ قبیلہ سپاہی ایسے گزرے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری طرف دیکھنے لگے تو جب فوج کا معاینہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپ نے اس قبیلے کو لوگوں کو نہیں دیکھا ان جوانوں کو لڑکوں کو نہیں دیکھا وجہ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں لیکن ان سے جب یہ میرے سامنے آئے تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوئی ان سے اور مجھے ان سے فتنے کی بو آتی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پائے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پتہ چلا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو لوگوں نے کہا ان سے وہ فتنے کی بو آتی یہ ہو جاتا ہے جن کا کشف ایسا مضبوط ہوتا ہے عالمِ بیداری میں دیکھنے لگتے ہیں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے حضرت فرماتے تھے لاہور میں اب تو لاہور بہت بڑا ہو گیا اس زمانے میں چھوٹا تھا تو وہ لاہور میں درس قرآن ہوتا تھا بس ان کا بہت مشہور اور پنجاب میں قرآن کے درس کو عام کرنے میں بڑا ہاتھ تھا یہ بات وہ خود بھی بیان کرتے تھے فرماتے تھے میں ایک مرتبہ لاہور کے کوچے میں جا رہا تھا تو یہ بات ایسے ہی نہیں ہے زاہوی رحمت اللہ علیہ نے سیر علام النبلاء میں کتنے ہی لوگوں کے واقعات ایسے لکھے تو مولانا نے فرمایا میں لاہور ایک جگہ جا رہا تھا ایک گلی میں تو ایک ایسے ہی گندے میلے کپڑے پاگل کہتے تھے لوگ اسے مجھے دیکھا تو لپٹ گیا بڑی اچھی طرح ملا وہ مجھے کہنے لگا کیا خدمت کروں میں حیران لوگ بھی حیران یا اللہ یہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے اور لوگ اس پہ حیران کیے تو کبھی بولتے ہی نہیں یہ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے تو میں نے کہا آپ نہیں یہ لیا کیا ہے آپ کا آپ کون ہیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا احمد علی بات یہ ہے کہ پہلی بار لاہور میں ایک آدمی دیکھا ہے تو تمہیں آدمی دیکھ کے مل جاؤں روز بیٹھا دیکھتا رہتا ہوں کہ کتا گزر رہا ہے بلا گزر رہا ہے بندر گزر رہے ہیں سانپ چل رہے ہیں یہی دیکھتا رہتا ہوں انسان آج تک دیکھا نہیں
کا تجربہ نہیں ہے خام ہر لوگوں کے متعلق برا سوچنا
और लोगों की बुराई चाहना ये बुराई करने से भी बदतर है ये कि अपने दिमाग को खराब करना न करे हर आदमी ठीक है हर आदमी सही है हर आदमी नेक है बस ये सोच होनी चाहिए जब तक के वो अपनी बुराई पर दलील कायम न कर दे कि मैं बुरा आदमी अच्छा बुरा आदमी मान लिया भाई पता चल गया कि आदमी वाकई शराब पीता है तो देखो उसकी बुराई को उस शख्स तक महदूद रखना चाहिए कि इतनी बुराई है एक आदमी सच बोलता है शराब पीता है तो ये तो ना कहो कि आदमी भी झूठा है कहो आदमी सच्चा है जो उसकी क्वालिटी और खूबी है उसका एतराफ करना दर हकीकत अपने आप को साबित करना होता है कि मैं इंसाफ से बात करता हूं यजीद बुरा था यकीनन और उसने वो कुछ किया कि सिर्फ जदीद अल-कसानी रहमतुल्लाह लिखा है कि हीच काफिर फरंग ना बुनत किसी फरंगी काफिर ने वो ज्यादतियां ना की होंगी जो उसने की किसी ने ये वतीरा ही बना लिया कि यजीद को हर वक्त बुरा कहता था तो एक बुजुर्ग ने उसे समझाया और उन्होंने कहा मियां यजीद को हर वक्त बुरा कहने की बजाय अपने मुतल्लिक की सोचो कि तुम क्या करते ऐसे ना हो कि कयामत में तुम्हारा और यजीद का सामना हो तो यजीद तुम्हारा मजाक उड़ाए कि तुम सारी जिंदगी मुझे बुरा कहते थे अपने करतूत देखें आज मुझसे भी बदतर निकले जिन गुनाहों का ताल्लुक जिस चीज का ताल्लुक हमसे नहीं है हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि उस गुनाह में मुलव्वस किसी आदमी की तशहीर करें और उसकी ताकीर करें उसे जलील जाने बचा क्या एक आदमी शराब पीता है ना भाई मेरी और उसकी डीलिंग ही नहीं मैंने पीनी नहीं ना मैंने पैसे देने मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि उसकी इस बुराई को मैं आम करता फिरूं वजह या तो रिश्ता हो शरीयत ने मुस्तस्ना करार दिया कि रिश्तेदारी है रिश्ता है किसी ने पूछा कि साहब ये कैसा है अब बयान कर दो हुकूमत का ओहदा आया और उन्होंने पूछा हुकूमत वालों ने कैसा है उसने बयान कर दिया कि जी माल में करप्शन है माली एतबार से बुरा है ये ओहदा अगर आप देंगे तो ये गड़बड़ करेगा ये मौके हैं शरीयत ने बताए कोई मौका नहीं है कोई बात नहीं है किस बुनियाद पर उसे बुरा कहना है आदमी सोचे अल्लाह ने قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ قتل نہیں کرتے سوائے اس خون کے جسے ہم نے ہی جائز قرار دیا قتل کے بدلے میں قتل ہو جانا بغاوت میں قتل کر دینا وہ جو شریعت کے اصول ہیں وَلَا يَزْنُونَ اور وہ بدکاری نہیں کرتے یہ دو صفتیں اللہ نے گنوائیں اور صفات کے بعد اور فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو بدکاری اور قتل اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان میں سے کوئی کام کرے گا يَلْقَ عَذَابًا وہ گناہگار ہو جائے گا ہم اس کے عذاب کو بڑھائیں گے جہنم میں رکھیں گے يَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا اور اصل اس کی سزا تو یہ تھی کہ ہم ذلیل کر کے اسے جہنم میں رکھتے آگے کیا ہے آگے اللہ نے کہا الا من تابا عام اگر وہ جس نے توبہ کر اور نیکی کے عمل کیے تو پھر کیا ہوگا دس گناہ کیے تھے پچاس گناہ کیے تھے بدکاری کی عادت ہی سے بڑھ گئی تھی آگے کیا ہوگا اگر اس نے توبہ کر لی اللہ نے فرمایا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ جتنے بڑے گناہ تھے ہم اتنی بڑی بڑی نیکیاں دے دیں گے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں بڑی نازک بات ہے بس ایک ہی فکر ہے اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا کہ تقدیر میں یہ گناہ اس دن کے لیے تھے کہ اللہ اسے نیکی میں تبدیل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام پر پائے ہمیں کیا معلوم کہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کے گناہوں جتنے گناہ کی ہیں اتنی نیکیاں دے دو پھر ہم تو پیچھے ہی رہ گئے متعدد احادیث اس معاملے میں آئی ہیں دو باتیں صرف آپ سے عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ چھپا لے گا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ اور اس گناہگار کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں رہے گا اور اس سے پوچھیں گے کہ اَلَمْ أَذْنَبْتَكَ ذَا یہ گناہ نہیں کیا تھا یہ کرتوت نہیں تھے یہ نہیں تھے یہ نہیں تھے حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ حَلَتْ یہاں تک کہ وہ آدمی سوچے گا میں تو برباد ہو گیا یہ تو ایک ایک چیز زندگی کے سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا وہ کہے گا میرے رب تو نے اس پہ پردہ ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ آج بھی اس پہ پردہ ہی ہے اور دیکھ ہم تیرے سارے گناہوں کو مثلا اس کے 10,000 گناہ ہیں تو یہ 10,000 نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں تو وہ جلدی سے بولے گا اور کہے گا میرے پروردگار بہت سے گناہ تو تو نے گنے ہی نہیں انہیں بھی نیکیاں بنا دیں یہ کیا ہے یہ اس گناہگار آدمی کی حالت ہے جس کو دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے قانون کی گرفت ایک اور چیز ہے وہ حکومت کا مسئلہ ہے وہ ان کا ہے وہ قانون نافذ کریں جو کریں ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم لوگوں کی تحقیر اور تذلیل کرتے رہیں اور ذہنی طور پر ان لوگوں کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ پاک جانتے رہیں بڑی سخت بات ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت کسی محلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے کہا حضرت بہت گناہ کر لیے زندگی میں اب توبہ کرتی تو انہوں نے کہا از خیر کسستی وبشر پیوستی عمر بھر خیر سے دور رہی اور اب شر جب آیا ہے شر کر کے سارے گناہ کر کے اب آئی ہے تو ابو سعید رحمت اللہ علیہ اس نے کہا شیخ ہرانچے بھی نمائم حضن جیسی بھی ہوں نا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے اندر سے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتی ہوں آپ کے پاس آئی ہوں توبہ کرنے کے لیے لیکن میں پوچھتی ہوں تو نیز ہرانچے بھی نمائی ہستی حضرت آپ اندر سے بھی اتنی پاک ہیں جتنے ظاہر میں آپ دکھائی دیتے تو ان کے مرید کہتے ہیں ابو سعید رحمت اللہ علیہ چپ کر کے چلے گئے اور رات بھر روتے رہے اور بار بار یہ پڑھتے تھے تو نیز ارانچے من مائی ہستی تو اندر سے بھی اتنا ہی پاک ہے تو صحیح جتنا لوگوں کی نظر میں تو اچھا لگتا ہے یہی حالت ہو جاتی ہے اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے متعلق کہا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا بھلا بتاؤ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہم کیا کچھ سوچتے سمجھتے رہے اور پتا چلا کہ آخرت میں بھی وہ لوگ غالب آ گئے اللہ کا فیصلہ ہے کون اس کے فیصلوں کو روک سکتا ہے کون اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے اس لیے ایک کرنے کا کام زندگی بھر یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے گناہ کی باتوں سے بچائے فراڈ چکر اس سے اس کے منصوبے اس سے ملیں گے یہ کریں گے یہ کہیں گے یہ اس طرح آئے گا بچائے اپنے آپ کو یہ کرنے سے سوچنا برا ہے اندر مشین لگ جائے گی खुदा की नाफरमानी को सोचने की और आदमी फिर मुस्बत अंदाज में सोच नहीं सकता, पॉजिटिव साइड पे सोच नहीं सकता। बीसियों चीजें ऐसी होती हैं कि हम गुमान करते हैं ऐसे हुआ, और जब साथी से पूछो तो कहानी कुछ और निकलती है, खुद शर्मिंदगी होती है कि यार हम इसके बदले क्या सोचते थे, ये आदमी असल में क्या है। और दूसरा काम, दूसरी बात जो आप इतनी तकलीफ करके आए हैं, जो करने का है वो ये है कि किसी भी शोबे में चले जाओ आदमी बनना खत्म हो गए। आदमी बना, आदमी नहीं रहे, उसकी दुनिया से एक मिसाल दें। 70 में आदमी मिल जाते थे, लकड़ी का काम कराना है, बिजली का कराना है, कोई और काम कराना है, मिस्त्री है, मिल जाते। हुकूमत की पॉलिसी हो गई कि बाहर जाएं ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो जितने अच्छे कारीगर थे किसी फील्ड के वो बाहर चले गए। अब ढूंढते फिरो मिस्त्री नहीं मिलता, अब ढूंढते फिरो कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो लकड़ी का सही काम करे, लोहे का कोई सही काम कर दे। ये क्या हुआ है, अफराद नहीं रहे। ये तो एक दुनिया की मिसाल है ना, दीन में भी यही हाल। हजारों बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं हमारे मदारिस से, मगर जिसे कहते थे ना कि इल्म का कुठला, अब ये लोग नहीं बनते, इल्म नहीं रहा। मसाजिद में तो जरूरत है, उलमा को आए जिन्होंने पढ़ा नहीं था, अब भी सारा हफ्ता अखबार पढ़ लेनी है, किताब के 100 सफे नहीं पढ़ने। नतीजा ये कि मिंबर पे बैठ के फिर अवाम की जो रहनुमाई होनी चाहिए उसकी बजाय सियासत आ जाती है, क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हम कहते हैं सियासत की शिरकत का हिस्सा ही है, लेकिन जो सुनने आए हैं आपको वो आपसे ज्यादा सियासत जानते हैं। अफराद नहीं रहे, आदमी नहीं रहे। और जिस वक्त हमारे यहां आदमी नहीं रहे, अब भी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सफों की सफें तैयार हो रही हैं, जिन्हें आप अपना दुश्मन कहते हैं, वो एक एक फील्ड में एक आदमी चाहिए होता है, हजार हजार आदमी उनके यहां मिल जाता है, हमारे यहां नहीं। दो किस्से सुनाए। एक इदारे में गए अमरीका में, तो किसी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत मिले, तो हमने कहा करते क्या है, उन्होंने कहा ये हम सेक्रेटरी तैयार करते। हमने पूछा वो कैसे, उन्होंने कहा जी 4 साल का कोर्स हम कराते हैं, और सेक्रेटरी किस लेवल के होते हैं, सदर का सेक्रेटरी हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जो सेनेटर्स होते हैं उनके सेक्रेटरी तैयार करते हैं, कांग्रेसमैन जो है उनके सेक्रेटरी तैयार करते हैं, जो गवर्नर होता है उसका सेक्रेटरी हम तैयार करते हैं। हमने कहा तरीका क्या, बड़ी दिलचस्प चीज लगी। उन्होंने बताया कि ये चीजें हम पढ़ाते हैं, फिर इस तरह हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, फिर गवर्नर से जब पूछता है कि फलां मामले में क्या राय है तुम्हारी, तो जो कुछ हमने पढ़ाया हुआ होता है सेक्रेटरी को वो राय देता है जब। फिर उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद जब प्रेसिडेंट बदलता है अमेरिका में, तो हम फिर लिखते हैं उससे पहले, जो भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होता है उसके पास जाकर उसे बताते हैं कि जनाब इतने सेक्रेटरी आपके लिए हमने तैयार किए हैं, तो जो वो चुन ले, 2 लग जाएं 4 लग जाएं 10 20 जितने आदमी हमारे खप जाएं उसके पैसे हम हुकूमत से ले लेते हैं, और पैसा फिर दुगना तिगना लेते हैं, हमारा इदारा भी चलता है, अफराद भी तैयार होते हैं। और यहां शहर घूम जाओ, किसी शरई मसले पर दिल ये चाहे कि इससे जाके बात करें कि शरई मसला पेश आ गया है, ये चीज पेश आ गई है, कुछ राय दें, कुछ बताएं, आदमी नहीं मिलता। कानूनी तौर पर भी ऐसे ये जुर्म हो गया है, कत्ल हो गया है, चोरी हो गई, कुछ हो गई, ऐसा वकील जो वकील ना हो, सिर्फ हमदर्द भी हो, वो नहीं मिलता, पैसा और ये चीजें हैं, तो बस भी तो अच्छे से अच्छा वकील मिल जाएगा, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो बेशक वकालत करे, पैसे ले, लेकिन दिल से हमदर्द हो, हमदर्द नहीं मिलता। हमारे हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, और ये बात असल में मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की थी, हजरत फरमाते थे हमारे जमाने में इस्लाम को वकील मिल गए हैं, हमदर्द नहीं मिले। मसलन एक औरत का बेटा मर गया, कत्ल हो गया, अब औरत आती है वकील से कहती है मेरा बेटा मर गया है कुछ करो, वो अदालत में केस ले जाता है, अदालत आकर पे फैसला कर देती है जी ठीक है मुजरिम बरी, तो बेचारी कुछ नहीं जानती लेकिन रोती है, कहती है मुझसे पूछो कैसे कत्ल हुआ है, कैसे मेरा बेटा मारा गया है, इस चीज को वकील नहीं ना वो हमदर्द है, और वकील अगर केस जीत जाए तो वो कहता है ठीक है मेरी वाह वाह होगी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे जमाने में इस्लाम को वकील मिल गए, हमदर्द नहीं मिले। इस्लाम का केस लड़ने के लिए जो यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ और किसके खिलाफ और इसके खिलाफ बिल्कुल हम ठोंक के मैदान में आ जाएंगे, मार देंगे, लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, सब कुछ कर गुजरेंगे, दौलत दे देंगे, पैसा दे देंगे, मगर इस इस्लाम पे खुद अमल नहीं करेंगे। वकालत हत्ता कि दूसरी बात हम आपसे अर्ज करें, यहां तक कि अमेरिका में जून जुलाई में देखा वो कोर्सेज चल रहे हैं, एक जगह चले गए, बोर्ड लगा हुआ था, हमने एक दोस्त से कहा था रोको देखें तो होता क्या है, तो देखने जो गए तो बच्चों को खाना खिलाने का तरीका और खाना खाने का तरीका सिखा रहे थे कि बेटे खाते कैसे, दस्तरखान पे टेबल पे बैठते कैसे हैं, चमचा कैसे पकड़ते हैं, कांटा कैसे पकड़ते हैं, ये सब चीजें सिखा रहे थे, तो हम तो समझते थे लेकिन इसके बावजूद हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा क्या बच्चों को बदतमीज बनाना है, बच्चों को खाने का तरीका ना बताओ, बोलने का तरीका ना बताओ, तो कोई डिसिप्लिन फॉर्म नहीं है। और यहां क्या होता है, गांव में आदत होती है ना कच्ची जमीन होती है उस पर थूक देने की, तो जमीन जज्ब कर लेती है, अब गांव सिमटते गए शहर फैलते गए, ये पिछले 20-30 साल में कच्ची आबादियां बड़ी तेजी से शहरों में आ गई, लेकिन दिमाग और तरबियत हुई गांव की रही ना, नतीजा ये निकला कि अब पक्की सड़क है उस पर भी थूक देता है, ये नहीं ख्याल करता कि ये पक्की सड़क है, थूक अब जज्ब तो नहीं होगा, जिसकी निगाह पड़ेगी इससे तकलीफ होगी, शरण ये गुनाह की बात है। तहजीब कौन सिखाए, तालीम 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 पे जोर, अब तो कहने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा तालीम की बात करता है, हम कहते हैं कि तालीम भी नाकिस और तहजीब है ही नहीं, तरबियत है ही नहीं, अफराद कहां से बनेंगे, और यही वो अलमिया है। यकीन मान लीजिए, यकीन से ये बात आप जाकर एक साल इस बात की तहकीक कर लीजिए, ये झूठ नहीं है, हमारे पास कोई इस्लाम का कानून नहीं है, हमारे पास कोई इस्लाम के कानून को के मुताबिक फैसला करने के लिए काजी नहीं, वक्त बदल गया है, कानून अब वो नहीं रहे जो पहले थे, उस कानून में कई नई चीजें आ गई हैं, अफराद चाहिए जो कानून को पढ़े, आखिरी आदमी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कानून मुरतब करवाया उलमा को बिठाकर, और उससे कहा कि कानून मुआशरे में मुरतब करो, वक्त बदल गया है, क्या क्या चीजें आप तब्दीली देखें, औकात की कितनी, कितने वक्त बदलने से कैसी तब्दीलियां आती हैं। आलमगीरी में 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ, 1807 1907 और 1909 302 बरस हो गए। आलमगीरी में लिखा है कि हमारे जमाने में बच्चों को सही तालीम और तहजीब सिखाना बहुत दुश्वार है, और हमारे दौर में बहुत ज्यादा बेहयाई की बातें आ गई हैं,
इसलिए अगर कोई आदमी यह कोशिश करे कि उसकी औलाद कम हो ताकि वो उनको तहजीब और तालीम दे सके तो ये जायज ये 1707 में कहते थे कि बच्चे अगर कम हो तो ये जायज है आलमगीरी में लिखा है देख लेना कि क्या चीज है ये कानून की तब्दीलियां हैं कुरान ने कह दिया कि चोर औरत और मर्द इनका हाथ काट दो अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून का असूल आ गया अब कितने पैसे पे हाथ कटना है किस तरह हाथ कटना है कहां से कटना है कौन काटेगा गवाह होंगे नहीं होंगे सैयदना अली रजी अल्लाह के पास एक मुकदमा आ गया और उन्होंने कहा रजम करो पत्थर मारो और फिर फरमाया तुम जानते हो पत्थर मारने कैसे होते हैं उनका नहीं حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ سب سے پہلے پتھر وہ شروع کرے گا وہ مارے گا کیونکہ جس نے گواہی دی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنی گواہی کو عملاً ثابت کرے اور اگر حکومت نے اپنے ذرائع سے اس جرم کو ثابت کیا ہے تو امیر المومنین سب سے پہلا آدمی ہوگا جو پتھر مارے گا یا گھوڑا مارے گا تاکہ وہ بات اپنی عملاً ثابت کرے کہ میں بالکل سچائی پر مبنی فیصلہ کر چکا ہوں कहां है कानून अब कानून दुनिया भर में कोडिफाइड हो गया कि फला दफा के तहत ये चीज होगी इस्लामी कानून हमारे पास अब नहीं है हम ये कहें कि इस दफा के तहत आएगी 1906 तक खिलाफत उस्मानिया तुर्की के लोग कानून को बनाते रहे वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आनी चाहिए क्या चीज होनी चाहिए करते रहे अब उसके बाद ऐसे अफराद नहीं रहे اور افراد اب بھی حکومت کی نظریاتی کونسل اور اس کے مقابلے میں لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ فرض کر لو 10-15-20 اہل علم وکیل جو جدید چیزوں کو پڑھے ہوئے ہیں قدیم اصول کی بات یہ ہے کہ ہم قدیم چیزوں سے نفع بخش چیزیں لیں گے اور جدید چیزیں جو ہیں ان میں جو امپلیمنٹس ہو سکتی ہیں ہم کریں جدید میں صالحیت کا عنصر اور قدیم سے نافعیت یہ دونوں کو ملائیں گے تب قانون جا کر بنتا ہے اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ 15-20 آدمی اگر لوگ الگ کر لیں اور سال میں اب تو مشکل نہیں سرمایہ دار کوئی تیار ہو اور 2-2.5 crore روپے وہ سال کے اس کام پہ لگا سکے تو 2-2.5 crore روپے لگا کر لائبریری بنا کے 15-20 آدمیوں کو فارغ کر دیں کہ بھئی کوئی کام نہیں آپ بیٹھ کے قانون بنائیں 20 سال بعد 25 سال بعد یہ قانون اگر بن جائے تو کسی کو تو کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کوئی اللہ کا اچھا بندہ اسے کہیں کہ یار یہ ہے قانون اس کو نافذ آپ کیجئے اس میں آپ کی دین بھی ہے دنیا بھی ہے قانون تو بہت دور کی بات ہے بینکنگ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے پوری طرح اس کو نہیں تحریف کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے ایک سال کی مہلت دی اب تک کام نہیں یہ سیاسی نعرے ہیں اسلام لاؤ یہ کرو یہ کرو بس ٹھیک ہے عوام بھی اس پہ چل پڑتے ہیں اب تو عوام بھی سمجھتے ہیں مگر ان سے جا کے پوچھو کہ حضرت اسلام لاتے ہیں قانون دے دیں کہاں ہیں کمپیوٹر کے لیے کیا احکامات ہیں سینما کی بلڈنگز ہیں ان کو اب کیا آپ نے کرنا ہے وی سی آر ہے ٹی وی ہے نیا دور آ گیا ہے اس کے کیا احکامات ہیں پوچھے جا مفتی حضرات منجھے ہوئے وہ اپنے طور پہ بیچارے لگے ہوئے ہیں باقی ایسی کوئی چیز جو آرگنائزیشن ہوتی ہے مستحق کرتے وہ نہیں اور اس سے بھی مشکل تر بات یہ ہے کہ قاضی نہیں ابھی آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا سرحد کا اور قاضیوں کے لیے علماء بڑے بڑے اس وقت کے علماء ان کا خیال تھا کہ وہاں اسلام آ جائے گا اور ہم کسی خاصے شمار میں نہیں لیکن ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے صاحب علم جن کا بڑا نام ہے اور بڑا حلقہ مکہ مکرمہ میں ہم سفر میں تھے تو فون آ گیا دوست تھے انہوں نے اٹینڈ کیا ان کا جی فلاں حضرت بول رہے ہیں میں نے کہا اچھا تو فون بند ہو گیا مکہ مکرمہ پہنچے تو ان سے بات کی
उन्होंने कहा किधर गए हुए हो उमरा की क्या तुम्हें पड़ गई यहां काजी नहीं मिल रहे आओ और यहां पर कजा का निजाम नाफिज करना है आदमी नहीं मिल रहे आदमी चाहिए हमें पता था पहले दिन से कि काजी नहीं मिलेंगे और ये नाकामी होनी होगी सियासी वजूह अलग है हमें नहीं खबर क्या हुआ हमें मालूम था हम निकासत अच्छा इंशाल्लाह कभी आएंगे हाजिर होंगे फिर बैठेंगे तो जब हम आए तो हमने कहा हजरत आपको अगर याद हो तो ज़ियाउल हक ने काजी सिस्टम के लिए जब कहा था तो आपने कहा था कि ज़ियाउल हक काजी कहां से लाएंगे यही वो जरूरत थी जिसकी वजह से आपने हमें फोन किया कहां है काजी नहीं अपराध नहीं आदमी नहीं मदारिस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उतने ज़हीन नहीं होते जितने ज़हीन मौजूदा दुनिया को मतलूब हैं अपराध तैयार कीजिए आप जिस इदारे में भी हैं आप जिस इदारे के भी हेड हैं आपके छोटे अगर मुस्लिम मुआशरे में हमारे मुल्क में अच्छे फर्द बन के उभरेंगे तो ये बहुत बड़ी नेकी है अल्लाह इस पे अजर देगा और ये बड़ी कंट्रीब्यूशन आप हेड हैं किसी इदारे के और आप अकाउंटेंसी में से सिखाते हैं कि बेटे ऐसे सही है ऐसे गलत है तो आप इस मुआशरे में एक अच्छा आदमी ला रहे हैं ये है जो अल्लाह ने कुरान में कहा है अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नुहयिल मौता हम हैं जो मुर्दों को जिंदा करेंगे व नक्तुबु मा कद्दमू और सूरह यासीन के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ने कहा नक्तुबु मा कद्दमू हम लिखते हैं जो कुछ लोग आमाल हमारे पास भेजते हैं वह आसार और जो कुछ पीछे छोड़ के अपना असर आते हैं हम उसे भी लिखते हैं ये मस्जिद जिन लोगों ने बनाई होगी दुनिया में इससे चले गए होंगे कुछ लोग ये उनके आसार हैं ये असर है उनका असर कहते हैं ना पांव के निशान को तो ये उनके पांव का निशान है वो चले गए ये असर गवाही देता है कि वो अल्लाह के अच्छे बंदे थे ये जब तक मस्जिद कायम रहे अल्लाह कहता है मैं उसकी नेकी लिखूंगा आप जब अच्छा आदमी तैयार करके मुआशरे को देते हैं तो वो आदमी आगे अच्छाइयां फैलाएगा उससे आगे अच्छाइयां फैलेंगी तो फिर ये आपके आसार हैं इसलिए जो हम नमाजें पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और रोजे रखते हैं हमारी ज़कात की एक एक पाई में और नमाज की एक एक फेल रुकत में इमाम अबूनी पर रहमतुल्लाह अलैह का हिस्सा है उन्होंने वादे करके बताया कि रुकू ऐसे करना है सजदा ऐसे करना है सारी जिंदगी खपा दी आसार छोड़े ये औलाद आसार होती है औलाद असर है बाप का नक्शे कदम है जैसी तरबियत करेगा अपने बच्चे और बच्चियों की उसके आसार हैं वैसी आगे जजा बदलेगा इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं कहा अल्लाह ने तुम में से जिसको दो बेटियां दी लफ्ज क्या बोला है कमाल का लफ्ज है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जिस शख्स की आजमाइश की गई मुब्तला किया गया वो बेचारा दो बेटियों में या दो बहनों में तो देखो उसने उनकी परवरिश और तरबियत करके उन्हें घर पहुंचा दिया शादी कर दी तो कयामत में वो बेटियां उसके और जहन्नम के दरमियान पर्दा बन जाएंगी ये फरमाया आजमाया गया वो आदमी इसलिए कि बच्चियों की तरबियत तालीम उनकी इज्जत की हिफाजत करना कोई मामूली बात नहीं फरमाया जो आजमाया गया बेचारा अपनी बहनों से या अपनी बेटियों से एक जगह इसीलिए आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जहन्नम में जाने वाले आदमी को देखा और फरिश्ते से ले जा रहे थे और दो बेटियां उसके सामने आ गईं और उन्होंने कहा अल्लाह ये हमारा बाप है इसने हमारे साथ ये नेकी की ये नेकी की अल्लाह ने फरमाया इन दो बेटियों की सिफारिश हमने बाप के लिए कबूल कर ली छोड़ दो जन्नत में ले जाओ ये आसार है ये असर है जो हम दुनिया में छोड़ के जाते हैं एक आदमी हॉस्पिटल बना देता है ये असर है जो वो दुनिया में छोड़कर जा रहा है एक डॉक्टर एक जान बचा लेता है जिंदगी ये जिंदगी असर है वो जो छोड़ के जा रहा है एक आदमी किसी बच्चे को लिखना सिखा देता है अब तो तहरीर का जमाना गुजर गया कुछ खती का अब तो टाइपिंग है कंप्यूटर है कोई किसी को ट्रेन कर देता है ये असर है जो वो छोड़ के जा रहा है अल्लाह ने कहा नक्तुबु मा कद्दमू हम लोगों के आमाल लिखते हैं जो हमारे पास भेजते हैं और जो कुछ असर वो दुनिया में छोड़ के आते हैं हम उसको भी लिखते हैं अल्लाह देखता है कि किसने क्या असर छोड़ा तो इसलिए अफराद तैयार कीजिए, आदमी तैयार कीजिए. हम तो अपने ही रोना रो सकते हैं, जाहिर है और शौकों का तो हमें इतना ही नहीं है, लेकिन अफराद तैयार नहीं हो रहे. ये सारी उम्मत का मसला है. कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, अफराद तैयार नहीं हो रहे. सदर वो हो गए जो उसके अहल नहीं थे, वजीर वो बन गए जो उसके अहल नहीं थे. वजह यह है कि आदमी नहीं मिलते. खैर और शर दोनों में तमीज कभी कभी बच्चा भी कर लेता है. मर्द वो है, आदमी और दाना वो है, जो दो शर आए और उनमें फर्क पहचान सके कि क्या कम शर है और क्या ज्यादा शर. ये बातें थी जो ख्याल में आया आपसे करें. अल्लाह ताला हमें तौफीक